الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کافی سارے ان کی زندگی کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی زندگی کو اگر ہم ایک عشر عشیر کے برابر بھی اس سے اپنے لیے لے لینا سبق، تو ہماری زندگی بہت زیادہ سنور جائے. یہ وہ عمر ہیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی بچپن سے ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی. ہم تو بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں نا کہ نہیں بچپن میں ہمیں ایسے نہیں پالا گیا، ہماری بچپن سے تربیت یہ نہیں ہوئی، تو اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، اب ہم کیسے چینج ہو سکتے ہیں. ان کی کوئی بچپن میں ایسی تربیت نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے اتنی زندگی ان کی پڑھ چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد جب یہ بدلے تو پھر کیسے بدلے، کہ یہ وہی عمر ہے کہ جس جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری غلطیاں مجھے بتائے. ہم لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں اگر کوئی ہماری غلطی ہمیں بتائے، بلکہ برا مان لیتے ہیں اور ان سے جھگڑنے لگتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو خوش ہوتے تھے اس بات پہ، بلکہ ان کو محبوب ہے وہ جو ان کی غلطیاں ان کے سامنے لے کر آئے. یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا، جو چاہتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر ہو جاؤں. اور جو انسان سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، اس کو اپنی غلطیاں کبھی بھی بتائی جائیں تو اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ مجھے کسی نے کیوں یہ کہہ دیا اور میں تو بالکل صحیح ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے بھی یہ کہنے والے ہیں کہ میری جو غلطیاں مجھے بتائے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ وہ عمر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کتنے غصے میں کبھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں، ایسے کہا کرتے تھے. یہی عمر ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے عمر اتق اللہ، یا عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو آگے حضرت عمر یہ نہیں فرماتے کہ تم کون ہوتے مجھے کہنے والے، تم ڈرو نا اللہ سے، ہم تو کچھ نہیں بھی ہیں تب بھی ہم لوگوں سے ایسی بات نہیں سن سکتے. اور وہ کیا فرماتے ہیں، لوگ اس کو منع کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ نہیں اس کو کہنے دو، اگر وہ نہیں کہے گا اور میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو مجھ میں کوئی خیر نہیں، اور اگر تم اس کو نہیں کہنے دو گے تو تم میں کوئی خیر نہیں، تو اس کو کہنے دو. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جب فرمایا حضرت عمر نے خطبہ دے رہے ہیں، ہم نے سب پیچھے کور کیا ہوا ہے، جب خطبہ دے رہے ہیں تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا ان کی اس بات پہ کہ سنو اور اطاعت کرو، تو اس نے کہا ہم نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں، یہ نہیں کہ اس کو اسی وقت پکڑ لو اور اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد یہ نظر ہی نہ آئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس کے پاس پاور آ جاتی وہ پاور کو کیسے یوز کرتا ہے. ہمارے پاس کوئی پاور نہیں بھی ہے تو پھر ہم اپنی زبان چلا کے دوسرے کو منع کر دیتے ہیں. اس وقت جب اس نے کہا تھا کہ آپ نے دو چادریں کیسے پہن لی، آپ کا لباس دو چادروں کا بنا ہوا ہے، ہمیں ایک ملی ہے، آپ کے پاس دو کیسے آ گئے؟ کوئی آج کے کسی اتھارٹی والے سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ چیز کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ تو سرکاری خزانے کی ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹے وزیر سے بھی نہیں پوچھ سکتے. میرا آپ دیکھیں خطبہ دے رہے ہیں اور وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے. آج عورت کی کیا عزت ہے عرب میں یا مسلمان ورلڈ میں، عورت کی کیا عزت ہے؟ کچھ بھی نہیں، عورتوں کو تو کچھ بھی سمجھتے نہیں. اور ان کے پاس خطبہ دے رہے ہیں اور جس وقت مہر کی رقم مقرر کرنا چاہ رہے تھے کہ مہر اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے تاکہ نکاح کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے نا، تو اس لیے کہ اتنے سے زیادہ نہ آگے بڑھو. اس وقت وہ عورت کھڑی ہوئی کہتی ہے عمر تم کون ہوتے ہو کہ یہ مہر کی رقم مقرر کرنے والے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے قرآن میں فرمایا کہ خزانہ بھی دے دو تو واپس نہ لو، تم کون ہوتے مقرر کرنے والے؟ اس وقت کیا فرمایا، یہ نہیں کہ دیکھو ساری مجمع میں میری بے عزتی کر دی. آج ایک بچہ بھی ہے نا، वो भी कहता है कि उनके सामने क्यों मुझे कुछ बोला। बीवी है वो शोहर से नाराज हो जाती है कि लोगों के सामने क्यों मुझे बात कही। ये पूरा मजमा बैठा हुआ है और खुतबा दे रहे हैं, और वो औरत जब खड़ी होकर ये कहती है तो उस वक्त आगे से क्या जवाब देते हैं, यहाँ पे तो सारे ही उम्र से ज्यादा फकीर हैं। ये होती है आजजी। हम शो करते हैं ना कि हम बड़े आजिज हैं, असल में हम देखा जाए हमारे अंदर आजजी नहीं है, सिर्फ बात है। ये वो उम्र है कि जो खिलाफत से पहले एक हाई मिडिल क्लास में समझे जाते थे और उस स्टैंडर्ड की जिंदगी गुजारते थे, और खिलाफत के बाद गुर्बत की जिंदगी गुजारने लगे। आप लोगों को देखते हैं जब उनको ओहदे मिल जाते हैं तो वो ऊपर को जाते हैं, इनकी लाइफ स्टैंडर्ड नीचे चला गया। और क्या तनख्वाह थी, एक सवारी, इनको कहेंगे अगर ये वहां पे जाके बात कर ले, एक सवारी जिसपे हज या उमरे पे जा सकते थे, गर्मी और सर्दी का एक लिबास और घर वालों के लिए खाना, इसमें क्या सेविंग होगी और इसमें क्या अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा। ये वो उम्र थे कि फिर तब इसके बावजूद भी फरमाते थे ना, जब इराक फतह हो गया तो फरमाते थे कि फुरात के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी गुम हो जाता है तो उमर से इसके बारे में सवाल किया जाएगा। ये वो उम्र है। इस कदर ज्यादा अल्लाह ताला का खौफ, और इस कदर ज्यादा इनके अंदर तकवा, और इस कदर ज्यादा अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही का एहसास। और जब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हमारी एक चीज पे बहुत इफेक्ट आता है, वो है हमारी इबादत। और हम कहते हैं कि हमारे पास जिम्मेदारियां जो इतनी ज्यादा है तो हम इबादत के लिए कैसे वक्त निकालें। वो जब फारिग होके बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे ना, फिर अल्लाह अल्लाह करूंगी। हजरत उमर के उस ज्यादा, इनसे ज्यादा किसके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आप देखें, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये जो फतुहात का सिलसिला था, क्या आप सोचते हैं फतुहात करना ही काफी था? इससे आगे उन जगहों को चलाना, उनमें इंसाफ का बोलबाला करना, वहां की सारी खबरगीरी रखना, वहां पर उन उस राया का एहसास रखना और उनके सारे मामलात की टेक केयर करना कोई आसान था? आप एक घर ही चला रहे हो या किसी जगह पर एक जगह का काउंसलर ही हो, मेयर ही हो, एक छोटा सा इलाका चलाना उसके लिए वो मुश्किल हो जाता है। और इतनी मुमलिकत फैल गई थी जहां से कम्युनिकेशन के वो जराए नहीं थे जो आज है, इसके बावजूद इंसाफ का क्या हाल था कि जहां पे मुसलमान जाते थे वो लोग नहीं चाहते थे कि यहां से कभी वापस जाएं। गैर मुस्लिमों से जब जिजिया लिया जाता था तो उसमें भी उनके साथ नरमी की जाती थी। एक दफा कहीं जा रहे थे तो देखा कि कई कुछ गैर मुस्लिम है, उनको खड़ा किया हुआ, धूप के अंदर खड़ा किया हुआ, तो पूछा कि क्या बात है, तो बताया गया इन्होंने जिजिया नहीं दिया। तो पूछा क्यों, तो भाई इनके पास कुछ ऐसी कमाई के लिए नहीं है, कोई जरिया नहीं है, और इस वजह से। तो फरमाया कि नहीं, इनका भी कुछ कुछ उनका वजीफा मुकर्रर किया वहां पर कि अगर ये नहीं दे सकते तो उनको ये दिया जाए, बजाय इसके, यानी जिजिया लेने में भी नरमी है। अब वो पता है जिजिया की जो रकम थी, जकात, मुसलमानों से जकात और उशर लिया जाता था और उनके ऊपर जिजिया था गैर मुस्लिमों पर, और जिजिया की रकम जकात से कम हो जाती थी, कम होती थी, यानी उनको इतना ज्यादा पे नहीं करना पड़ता था, स्टिल उनकी जान माल इज्जत ये सब चीजें मुसलमान मुमलिकत ने अपने जिम्मे ली हुई थी कि उनकी निगहदाश्त का जिम्मा मुस्लिम मुमलिकत के ऊपर है। और मैं इबादत की बात कर रही थी कि जब एक इंसान पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो ज्यादातर ये होता है कि उसकी इबादत इफेक्ट होती है, और वो उसके अंदर अपने आप को समझता है कि यहाँ पे गुंजाइश निकल सकती है, जाहिर है मैं क्या क्या करूंगी और मेरी जिम्मेदारियां इतनी हैं। लेकिन हजरत उमर का हाल ये था कि इबादत में इतनी मेहनत करते थे, नफली नमाज बहुत ज्यादा अदा करते थे, मुसलसल रोजे रखते थे, और अपनी आखिरी उम्र में रोजों में भी इजाफा कर दिया था, और सदका खैरात करने में सबसे आगे थे। हर साल उन्होंने हज किया था अपनी खिलाफत में, हर साल। और आपको जैसे कि पता है कि तमाम गजबात में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। इनके दौरे खिलाफत में जो भी जंगें हुई, गो के इन्होंने उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया साहबा के मशवरे से, वो कहते थे कि नहीं आपकी जरूरत यहाँ पे है, आप खुद ना निकले, लेकिन जो फौजों को चलाने वाले थे पीछे से, वो यही थे। उनको सारा जो ऑर्डर्स भेजने, जो सारे उनकी तरबियत और उनको जो गाइड करना है, वो इनकी तरफ से था। यानी ये वो कमांडर थे जो पीछे बैठ के भी अपनी फौजों को चलाने वाले थे। क्यों उनके जमाने में इतनी फतूहात हुई, बाद में तो नहीं हुई, मुसलमान तो वही थे। क्या बात हुई, वो लीडर वैसा लीडर नहीं मिला, समझ आई। और हज, जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल हज किया, और अपने पूरे दौरे खिलाफत में इन्होंने एक स्पेशल स्टाफ मुकर्रर कर दिया हुआ था कि जो भी लोग आए इनको हज की तालीम देना, तरबियत देना, हज के लिए इनको जो भी मदद करनी है वो करना, वसाइल मुहैया करना। और ये लोग लोगों को हज की तरबियत भी देते थे, और जगहों जगहों पे जाकर लोग ऐसे मुकर्रर किए हुए थे जो लोगों को जाके हज के लिए मोटिवेट करते थे कि हज करने के लिए आओ। और हजरत उमर फरमाते थे कि मेरा इरादा है कि मैं अपनी रियासत के हर शहर में अपने लोगों को भेजूं, अपने खरकारे भेजूं, जो जाके देखें कि किसने इस्तताद के बावजूद हज नहीं किया। जिसने इस्तताद के बावजूद हज नहीं किया, मैं उस पर जिजिया आयद करूंगा। जिजिया किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से ना। और आज हमारे पास इस्तताद होती है, हम वेकेशंस पे जाते हैं, हम सैरो तफरी करते हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम शादियों पे बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर होश नहीं है तो हज की नहीं। उसको हमने रखा हुआ कि जब बूढ़े हो जाएंगे व्हील चेयर पे जाएंगे हम। हज के मामले में हम इतने रिलैक्स्ड हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं उसे जिजिया लूंगा। और मक्का और मदीना के दरमियान जो रास्ता था ना, इस रास्ते में सारे में इन्होंने मुसाफिरों के लिए वसाइल मुहैया किए हुए थे, और खास तौर पे पानी का इंतजाम लोगों के लिए क्या होता है। देखो उस जमाने में थोड़ी ऐसे देखो रेस्ट एरियाज होंगे जहां पे जाके लोग कुछ ले सकते हो। फिर बाजार की बहुत कड़ी निगरानी करते थे कि बाजारों के अंदर सही शरीयत के मुताबिक लेन देन हो। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने सैयदना उमर को एक बाजार में ऐसे देखा कि एक हजार पहनी भी है नीचे की, यानी तहबंद से चादर पहनी भी है, इसमें 14 पैबंद लगे हुए, और एक पैबंद चमड़े का था, और हाथ में अपना दुर्रा पकड़ा हुआ है, और इस हालत में बाजारों के चक्कर लगाए रहे हैं, और सिवाय इस पैबंद लगी आजार के बदन पे और कोई कपड़ा नहीं, कोई कमीज नहीं है, कोई सर पे चादर नहीं लपेटी हुई गर्मी से बचने के लिए। और अपने ऐसे निगरान भी मुकर्रर किए थे, ऐसी टीमें बनाई हुई थी जो बाजारों के चक्कर लगाते रहते थे कि लोगों को चेक करें कि कैसे कर रहे हैं मामला, और ये नहीं कि खुद आराम से बैठे हुए हैं कोई एसी चला के, ये कोई अपने महलों में अपने ऐवाने सदर में, वो भी निकल के आके दुर्रा पकड़ के बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी को देखा कि उसने दूध में पानी मिला हुआ, उसका सारा दूध फेंक दिया। जखीरा अंदोजी नहीं करने देते थे, कि जखीरा अंदोजी समझते हैं ना कि जब वो मतलब शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर हम लाके, जो हमारे मुल्कों में बहुत आम है, हाँ बहुत आम है, ताकि वो जो है ना अपना मुनाफा कमाए। बिल्कुल रमजान में माशाल्लाह और कीमतें हाई हो जाती हैं ताकि जो है ना और सवाब कमाया जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अपना दुर्रा जो था वो कंधे पे रखते थे, और जहां जरूरत होती तो लोगों की इसलाह भी करते थे इस तरह से। और फरमाते थे कि कमाई का कोई भी जरिया, चाहे वो कितना ही हकीर और कितना ही हल्का नजर आए, वो बेहतर है इससे कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ। आप देखें अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन कभी ऐसे होता है ना कि इंसान अच्छा भला होता है, फिर उसके हालात तंग हो जाते हैं। अब वो शर्माता है कि मैं क्यों कोई ऐसा प्रोफेशन करूं, हमारे तो हाँ जी किसी ने भी ये नहीं काम किया, तो वो कहता है इधर उधर से मांग के सदका खैरात मुझे दे दो, लेकिन मैं खुद नहीं कमाऊंगा। क्यों? इसलिए कि उसको बेइज्जती महसूस होती है कि हम तो जद्दी पुश्ती बहुत अमीर रहे हैं, मैं क्यों कमाऊं। तो वो फरमाते हैं चाहे हकीर सा काम, हल्का काम वो भी करना पड़े, तो वो बेहतर है इससे कि आप किसी के आगे हाथ फैलाएं। और फकीरों तक को फरमाते थे, या फकीरों की जमात सर उठाओ, तिजारत करो। तिजारत को बहुत ज्यादा उसके लिए मोटिवेट करते थे लोगों को कि आप ट्रेडिंग करें। फरमाते थे कि अब रास्ता वाजे हो चुका है, अब तुम लोगों पे बोझ मत बनो, तिजारत करो। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये देखिए ऐसे लोगों की बहुत उनके साथ सख्ती करते थे जो तिजारत करते थे और उनको इस्लामिक लॉज का नहीं पता कि तिजारत कैसे करनी है, उनके पर बहुत सख्ती करते थे और फरमाते थे कि जिसे सूद के बारे में कोई इल्म नहीं वो हमारे बाजार में तिजारत के लिए नहीं आ सकता। क्योंकि क्या फरमाया कि हमारे बाजार में वो आदमी कारोबार करे जो इल्म वाला हो, वरना वो समझ ले कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे वो सूद खा रहा है। क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं ना, बारीक चीजें जो हमें समझ नहीं होती, हम तिजारत शुरू कर देते हैं, हम कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, आपको बिजनेस का पता ही नहीं है कहाँ पर जाकर। मिसाल के तौर पे एक एक मेरे सामने एक इंसिडेंट आया कि किसी ने यहां से चीज ऑर्डर कर दी है और उसको पहले ही ऑनलाइन लगा दिया कि आप ये चीज यानी बेचने के लिए अवेलेबल है। मैंने कहा ये नहीं कर सकते आप जब तक वो चीज आपके हाथ में ना आ जाए। अब देखिए एक बिजनेस का रूल है, ये जब अहदीस का आप चैप्टर पढ़ते हैं ना सारा तिजारत का, तब आपको पता चलता है। तो फरमाते थे कि कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता जब तक कि वो इस्लामिक लॉ, ये नहीं कि आप सारा पढ़ें लेकिन बिजनेस का लॉ ना आप पढ़ लें कि बिजनेस में कौन सी चीज अलाउड है और कौन सी नहीं अलाउड। तो और जो अशाय जरूरत थी इनकी कीमतें आपको पता है कि एक मुकर्रर करती गवर्नमेंट, तो ये मुकर्रर कर देते थे कि इतनी कीमत पे ये चीज बिकेगी, इससे ज्यादा आप ये बेच नहीं सकते, ताकि प्राइस कंट्रोल करें। उस वक्त भी होती थी प्राइस कंट्रोल, सोचे हम सोचते हैं आज के वक्त की ये टर्मिनोलॉजी है। तो उस वक्त एक आदमी आया, वो तेल लेकर आया बाजार में और वो अपने भाव पे बेचने शुरू गया। तो फरमाया नहीं, तुम अपने भाव पे नहीं बेच सकते सौदा, हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे कि तुम हमारे भाव पे बेचो, लेकिन अगर तुमने अपने भाव पे बेचना है तो तुम यहां से चले जाओ किसी और बाजार में जाके बेचो। इस तरह का कंट्रोल रखते थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रूल है जो कि हमें भी समझ लेना चाहिए और जो आज की दुनिया ने भी इसको अप्लाई किया कि जब तक आप तालीम ना ले लें उस फील्ड की, उस वक्त तक आप उसमें काम नहीं कर सकते। अकाउंटिंग वाला है, ऐसे तो नहीं बिठा देंगे किसी को उसने अकाउंटिंग पढ़ी ही ना हो। तो वो कहते थे बाजार में भी तिजारत वो करे जिसने तिजारत के बारे में इस्लामिक लॉज को पढ़ा हो। और जो जैसे मैनेजमेंट के लिए, सुभान अल्लाह मैं सोच रही थी सारी ये बातें इनकी पढ़ के कि इनको किसने सिखाया। आज ये इस फील्ड के हर एक के अलग माहिरीन है ना, कोई बिजनेसेस का है, कोई इस तरह मैनेजमेंट का है, कोई और, लेकिन इन सुभान अल्लाह कैसे अल्लाह ताला ने इनको इतना फहम दिया हुआ था, इतनी समझ थी कि निगरान मुकरर किए, उनके नीचे और कारिंदे थे जो काम करते थे। जाहिर ये एक बंदे का काम तो नहीं, टीम वर्क है ना। और हर जगह पे जहाँ पे गवर्नर भेजे हुए उनसे, तो वो जो हायरार्की एक मैनेजमेंट का एक चीज है कि ऊपर एक फिर उससे नीचे फिर उससे, वो उस वक्त उन्होंने कायम किया था, सुभान अल्लाह। और एक उनकी बात बड़ी प्यारी है कि फरमाते थे कि जिसने एक चीज को, एक जिन्स को 3 दफा उसकी तिजारत की और उसमें उसको नफा नहीं हुआ, तो उसको चाहिए कि किसी दूसरे काम की तिजारत करे, किसी और चीज को। 3 दफा अगर आपने करके देख लिया ना और आपको इसमें फायदा नहीं हुआ, तो किसी और चीज की तिजारत करो। और उनकी एक ये भी बात है कि फरमाया करते थे, इस पे इनकरेज किया करते थे कि कोई ना कोई फन जरूर सीखो, कोई हुनर आपके हाथ में होना चाहिए। हम लोगों की पढ़ाइयाँ अक्सर ऐसी होती हैं कि आज FA BA करने के बाद भी उसको कुछ पता ही नहीं, कोई हुनर नहीं है हाथ में। हुनर कोई ऐसी स्किल आपके पास हो, तो फरमाते थे मुमकिन है तुम्हें किसी वक्त इसकी जरूरत पेश आ जाए। कितनी विजडम है ना इस बात में, ये वाकई अगर आपके पास कोई हुनर है ना, चाहे आप सिलाई कढ़ाई का हुनर क्यों ना हो, कोई भी हुनर है जिंदगी में कभी जरूर काम आ जाएगा, सुभान अल्लाह। और किसी नौजवान को देखते थे और उनको वो अच्छा लगता था ना, तो पूछते थे कि तुम्हें कोई काम आता है, अगर वो आगे से कहता था कि नहीं, तो फरमाते थे ये मेरी नजरों से गिर गया। इतनी यानी उनको होती थी कि हर एक नौजवान जो ना कोई हुनरमंद हो, कुछ भी लेकिन कोई हुनर। आप देख लें किसी को गाड़ियां ठीक करने का हुनर आता है, किसी को प्लम्बिंग का आता है, किसी को इलेक्ट्रिक का काम आता है, कभी भी हुनर वेस्ट नहीं होता। और हमारे पहले लोग इस चीज पे बहुत तवज्जो दिया करते थे, लड़कियों की तालीम के अंदर ये जो घर में हुनर सिखाया जाता था, अब वो हुनर भी सब खत्म हो गए। और ये भी फरमाते थे कि तुम में से कोई भी बैठे बिठाए महज ये दुआ करता रहे कि अल्लाह मुझे रिस्क दे दे, रिस्क दे दे, ऐसे शख्स को यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर आसमान से सोने चांदी की बरसात नहीं होगी। तो समझ लो इस बात को कि आपको अगर रिस्क का वो करना है तो आपको उसके लिए कोई मेहनत करनी है। फिर जो भी स्किल्ड लोग होते थे ना, उनकी बड़ी कदर करते थे। एक दफा मुगीरा बिन शोभा को हुक्म दिया कि कूफा में जितने शायर हैं, इनके जो भी अशआर हैं जो उन्होंने जमाने इस्लाम में कहे हैं, लिखवा के भेजो। तो मुगीरा ने, एक शायर थे अगलब, उनको बुलवाया और शेर पढ़ने की फरमाइश की। फिर लबीद को बुला के ये हुक्म दिया। वो उन्होंने शेर में क्या पढ़ा, सूरह बकरा पढ़। वो लिख कर लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने शेर के बदले मुझे ये नेमत दे दी है। तो मुगीरा ने ये सब कुछ हजरत उमर को लिख के भेज दिया। वहां से जवाब आया कि अगलब जो है, जिसने वो शायर शेर लिखे थे, उसके जो उसका वजीफा, उसमें से 500 घटा के लबीद को 500 का इजाफा कर दो। कितनी बड़ी बात है ना। इसी तरह एक और शायर था मुतमिम, उसके भाई को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में ना खालिद बिन वलीद ने गलती से कत्ल कर दिया था। तो इस वाक्य से उसको इतना सदमा पहुंचा था कि वो जहां जाता था बस मरसिए कहता रहता था, खुद भी रोता था और लोगों को भी रुलाता था, ऐसे उसके मरसिए होते थे। तो हजरत उमर की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने उससे मरसिया पढ़ने की फरमाइश की। तो उसने हजरत उमर से मुखातिब होकर कहा कि अगर मुझको ऐसा मरसिया कहना आता, हजरत उमर ने उससे फरमाया, जो जैसा तुमने कहा है, तो मैं अपने भाई जैद के लिए मरसिया कहता। अभी तक उनको गम था अपने भाई का। तो उसने कहा, मीरुल मोमिनीन, अगर मेरा भाई आपके भाई की तरह शहीद होके मारा जाता तो मैं हरगिज उसका सोग ना करता। हजरत उमर हमेशा ये फरमाते थे, मेरे पास मेरे भाई की ताजियत मुतमिम जैसी किसी ने नहीं की। इतने अच्छे अल्फाज कहे थे। इसी तरह पहलवानी और बहादुरी में तुलैहा और अमर जो थे, अमर बिन मादी, ये तमाम अरब में पहलवान, बहुत बड़े पहलवान समझे जाते थे और बहादुरी में बहुत ज्यादा थे। हजार हजार के सवारों के बराबर इनको माना जाता था। तो हजरत उमर ने इन दोनों को अपने पास बुला के इनकी इज्जत अफजाई की। और कादसिया का जब मार्का हुआ था तो इनको भेजा, तो साद बिन अभी वकास वहां पे थे ना कमांडर, तो उनको लिखा कि मैं 2,000 तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, 1,000 वो और 1,000 वो। इतनी ज्यादा यानी उनको इनकरेज करते थे, उनको शाबाश देते थे और इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते थे किसी के अंदर कोई फन, कोई ऐसी खसूसियत होती थी। और जो आप सोचते होंगे, ये जो कंप्यूटर, आज तो कंप्यूटर का दौर है, तो आप सोचते होंगे कि रैकेट कीपिंग कंप्यूटरों से आज होती है, तो पहले चलो रजिस्टर होते थे, तो हमारे जब हम बड़े हो रहे थे उस वक्त ऐसी चीजें नहीं होती थी जो आज रैकेट कीपिंग के लिए। लेकिन आप सोचें कि हजरत उमर के जमाने में ये शुरू हो गया था, क्योंकि अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बहरीन से इनकी खिदमत में 5 लाख दिरहम जब लेकर हाजिर हुआ, तो उन्होंने मुझसे वहां के लोगों के हालात पूछे, मैंने सब हालात बताए। फिर उन्होंने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने कहा 5 लाख दिरहम। तो बड़े हैरान होके पूछते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तो मैंने अर्ज किया, जी हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। फिर उन्होंने 5 लाख ऐसे करके गिनवाए। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, जाओ जाके सो जाओ, सुबह को बात होगी। जब सुबह को वो हाजिर हुए, फिर पूछा कि क्या लाए हो, कहते हैं 5 लाख दिरहम लाया। तो फरमाया कि मालूम है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अर्ज किया, जी हाँ, 1 लाख, और गिनते गिनते 5 लाख पूरे करते। कहते हैं, मैं उंगलियों के साथ शुमार कर रहा था। और हजरत उमर ने पूछा, क्या ये सब पाकीजा माल है, यानी हलाल माल है? मैंने अर्ज किया, मुझे तो बस इसी चीज का इल्म है जो मैंने अर्ज कर दी। उन्होंने भी ये नहीं कहा, हाँ, हलाल ही है, सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और अल्लाह की हमदो सना बयान की, और फिर फरमाया, ए लोगो, हमारे पास बहुत ज्यादा माल आया। अब ये वही मुसलमान है जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, और 5 लाख दिरहम कितनी बड़ी रकम थी। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहो नाप के या गिनती के हिसाब से तकसीम कर लो। इस वक्त एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अजमी लोगों को देखा है कि वो माल का रिकॉर्ड रखते हैं। इस आदमी की बात सुनकर सैयदना उमर भी रिकॉर्ड रखने की के ख्वाहिशमंद हुए, और उसके बाद से रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हो गई मुसलमानों में। इस तरह हजरत उमर के दौर से ये शुरू हुआ था। इसी से मुझे एक बात और याद आई कि एक दफा बहुत सारा खजाना आया था माले गनीमत में, तो कालीन था और उसके अंदर बड़ा सा कालीन खुला हुआ और उसके अंदर हीरे जवाहरात और इस तरह। तो इनका एक बच्चा था, उसने जाके एक अंगूठी उठाई और उसे खेलने, बच्चे खेलना शुरू हो जाते हैं, अपने मुंह में डालता, कभी उछालता, उसे अंगूठी लेके वापस रखी और रोने लगे। तो लोगों ने कहा, आप किस बात पे रोते हैं, इतनी अल्लाह ताला ने बड़ी आपको फतह दी और इतना माल अब आ गया है और इतना कुछ हो गया है, तो आप रो रहे हैं। तो फरमाया, मैं इसलिए रोता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला जब किसी कौम के ऊपर रिज़्क़ की और नेमतों के दरवाजे खोल देता है तो उनमें दुश्मनियां और नफरतें पैदा हो जाती हैं। और आप देखें, वाकई जितना माल ज्यादा आता है, बजाय इसके कि लोग आपस में मिल के रहें, हसद, बोझ, दुश्मनियां, ये अदालतों में किनके मुकदमे ज्यादा लगे होते हैं? गरीब गरीब लोगों के तो नहीं होते, मालदार लोगों के ही होते हैं, जो जायदादों के ऊपर झगड़ रहे होते हैं, माल पे झगड़ रहे होते हैं। फिर आप देखिए, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, के आज का जो दौर है, ऐसे लगता है कि हम प्री इस्लामिक दौर में रह रहे हैं। क्योंकि आप जब जाहिलियत के जमाने की चीजें निकालें ना, तो बहुत ज्यादा आपको मिलती जुलती आज के जमाने में अपने मुल्कों में नजर आएंगी, जिससे अफसोस होता है कि हम कौन से जमाने में रह रहे हैं, क्या वो इस्लामिक दौर में या फिर प्री इस्लामिक दौर में। तो आप देखिए, उस जमाने में भी और आज भी एक और मिलती जुलती चीज वो ये है कि यतीमों का जो माल होता था उस वक्त भी और आज भी, जो भी ताकतवर होता है वो हड़प कर देता, चाहे वो चचा हो, ताया हो, कोई भी खानदान का बड़ा है ना, जिसमें ज्यादा ताकत है, उसके बाद वो यतीम का तो माल गया, जो बच्चा यतीम हो जाता बेचारा खुद तो देख नहीं सकता। अब आप सोचें कि हजरत उमर के जमाने में, हालांकि ये समझा नहीं जाता, लेकिन देखें कि यतीमों की परवरिश भी गवर्नमेंट का काम था, स्टेट का काम था। आज आप देखें, किसी घर के अंदर कोई यतीम हो जाए, कहाँ स्टेट को पता है इसका माल जाए जहां मर्जी, कहाँ जाया हो जाते हैं, कहाँ कौन लूट लेता है, कोई पता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो वो इस तरह से उनके माल की निगहदाश करते थे। एक दफा इन्होंने हजरत उमर के पास हकम बिन अबिल आस आए, तो इन्होंने कहा उनसे कि मेरे पास कुछ यतीमों का माल पड़ा हुआ है और जकात देने की वजह से वो कम होता जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि तुम इसको कहीं लगा दो ताकि उनका माल बच जाए और उसमें जो नफा हो वो उसको इनके लिए जमा करते जाओ। और वो क्या हुआ कि उनका 10,000 उन्होंने उनको हवाले किए और वो बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुंच गए। देखिए, ये एक खैर ख्वाही है ना, कि उनकी भी खैर ख्वाही। अब ये एक ऐसा बंदा ही कर सकता है जो बहुत ज्यादा किसी के लिए सोच विचार रखता हो, खैर ख्वाही रखता हो, और उसके अंदर ये चीज हो कि मैंने यतीमों के माल की निगहदाश्त करनी है। इसी तरह इनके अंदर ये बहुत चीज थी हजरत उमर में, कि ये उन मुसलमानों का बहुत ख्याल करते थे जो शुरू के मुसलमान थे। जैसे एक दफा इनके दरवाजे पे बहुत सारे कुरैशी सरदार आए, तो वो इनमें सुहैल बिन अमर भी था और अबू सुफियान भी था, और उसी वक्त हजरत बिलाल और हजरत सुहेब भी आ गए। तो ये तो आपको पता है, आजाद करदा गुलाम, इनकी तो उस माशरे में चाहे आजाद भी हो गए हो ना, वो वैल्यू नहीं होती थी। तो लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कोई फर्क नहीं किया, तो हजरत उमर ने सबसे पहले इनको अंदर आने की इजाजत दी, जो ये आजाद करदा गुलाम थे, हजरत बिलाल, हजरत सुहेब, और वो जो बड़े बड़े सरदार थे उनको भी बाहर ही रखा। अब इस तर्ज अमल से उनको बड़ा अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और अबू सुफियान ने अपने साथियों से कहा, आज के दिन जैसा रुसवा कुन दिन मैंने कभी नहीं देखा, कि देखो उमर को, कि गुलामों को इतनी इज्जत दे दी और हमें दरवाजे पे खड़ा रखा है। आप समझ लेना, अंदर आने की इजाजत, तो वो बाहर खड़े हुए हैं। अब अंदर उनको लाया गया, जो कि पहले के गुलाम थे, अब तो नहीं है, लेकिन उनके जहनों में तो यही है ना। तो सुहेल ने कहा, सुहेल का आप जानते हैं कौन थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ए लोगो, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे चेहरों पर नाराजगी के जो आसार देख रहा हूं, अगर तुम हजरत उमर के इस अमल पर नाराज हो रहे हो तो तुम्हें पहले अपने माजी को देखना चाहिए। इन गुलामों को और तुम्हें इस्लाम लाने की दावत एक साथ दी गई, لیکن انہوں نے بلا تاخیر اسلام قبول کر لیا، لیکن تم لوگوں نے تاخیر کی۔ اب تم، سبحان اللہ، یہ بات اتنی زیادہ مجھے زبردست لگی کہ اب تم اس بات کی فکر کرو جب قیامت کے دن ان لوگوں کو تم سے پہلے آواز دی جائے گی، سبحان اللہ، کہ وہاں پہ کیا کرو گے، وہاں پہ کس کی شکایت کرو گے؟ آج تو تمہیں عمر سے شکایت ہو رہی ہے نا کہ ان کو پہلے بلایا گیا، تو اس دن کیا کرو گے جب اللہ کے ہاں ان کو پہلے سبقت دی جائے گی؟ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس یہ لوگ سردار آئے، اور سہیل بھی تھے اور اس کے اندر حارث بن حشام اور یہ سب، تو اتنے میں کچھ مہاجرین بھی آ گئے جو شروع میں ایمان لے کر آئے ہوئے تھے۔ تو آپ سہیل اور حارث سے کہتے تھوڑا ادھر ہو جاؤ، تھوڑا ادھر ہو جاؤ، اور ان کو ساتھ بٹھاتے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد انصاری مسلمانوں نے آنا شروع کیا، تو آپ نے ان سے اور کہا سہیل اور حارث سے کہ اب آپ تھوڑے اور دور ہو جائیں، تھوڑے اور دور ہو جائیں، یہاں تک کہ دونوں سب سے پیچھے چلے گئے، مطلب بٹھاتے گئے نا ان کو ساتھ اپنے بٹھاتے گئے، تو وہ بڑی دور چلے گئے۔ جب دونوں وہاں سے نکلے تو حارث نے سہیل سے کہا کہ آپ نے دیکھا عمر نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو سہیل کہنے لگے، حارث میرے بھائی، امیر المومنین کو برا کہنے کے بجائے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو ان غریب لوگوں نے فوراً لبیک کہا، جب ہم نے اسلام قبول کرنے میں دیر کر دی۔ اب جب سارے چلے گئے نا، وہ مہاجرین اور انصار، تو حارث اور سہیل دوبارہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، ہم نے آج اپنے ساتھ بڑا ایسا سلوک دیکھا جو ہمیں بڑا ایسے محسوس ہوا ہے کہ اب بڑی ہمیں مطلب بےعزتی سی محسوس ہوئی ہے، اب ہم کون سا ایسا عمل کریں جس کے ذریعے ہم اس کا تدارک کر سکیں، کسی طرح کمپنسیشن ہو جائے؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا، میرے نزدیک تو ایک طریقے سے ہی ہو سکتا ہے کہ روم کے علاقے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ دونوں شام کی طرف چلے گئے اور وہیں پہ جنگیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، سہیل اور سہیل بن عمر اور حارث بن حشام۔ اللہ اکبر۔ پھر سیدنا عمر نے مہمان خانے تعمیر کروائے تھے، یعنی اس زمانے میں آپ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، کوئی ریسٹ ایریاز نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیز تو ہوتی نہیں تھی، تو جو مسافر ہوتے تھے وہ کہاں ٹھہرے، تو ایسے مہمان خانے ہر شہر میں انہوں نے تعمیر کرائے جہاں مسلمانوں کو بیت المال کی طرف سے کھانا ملتا تھا، اور لنگر بھی لگایا جاتا تھا مدینہ میں، اور اکثر وہاں خود جا کے مہمانوں کے کھانے، جو بھی مسافر آئے ہیں، مہمان ہیں، ان کو جو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کا خود جائزہ لیتے تھے۔ اور ان کی مملکت میں کوئی بھی آدمی فقر و فاقے میں ایسے نہیں تھا کہ بھوکا سوتا ہو، جو بھی اپاہج مفلوج لوگ ہوتے تھے ان سب کی کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا گیا تھا، اور لاکھوں سے اوپر افراد تھے جن کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ جب جو بھی دیکھیں، جو میں آپ کو بتاتی ہوں، اتنا مال غنیمت آیا تھا، جب وہ عوام کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہو تبھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے اوپر ہی خرچ کیا جا رہا ہو تو وہ چاہے کتنا بھی بڑا خزانہ ہو تو اس سے اپنی جیبیں بھریں گی، انسان کا پیٹ تو کبھی نہیں بھرتا، پھر عوام پھر وہ اسی حالت میں رہ جاتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے انہوں نے پروجیکٹس کیے اور کس طرح سے ان کی حالت بدل کے رکھ دی۔ اپنے آخری وقت میں، جب ان کے وفات کے وقت سے پہلے کی بات ہے، فرماتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو کوئی بیوہ ایسی نہیں ہوگی جس کو ہمارے علاوہ کہیں اور جانا پڑے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا رہے، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا کسی کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت پڑے۔ اور تب بھی یہ حال تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عراق میں، عراق تک فتح ہو گیا تھا نا، تو سرزمین عراق میں بھی اگر زمین کی ناہمواری کی وجہ سے کوئی خچر گر جاتا ہے تو اس کا میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ کوئی خچر بھی گر جاتا ہے، ادھر انسان قتل ہوتے رہے، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی، اغوا ہو رہے، ڈکیتیاں ہو رہی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے ہیں گدا بھی، خچر بھی گر جائے نا اگر، تو میں اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ हदीस के मामले में इतनी ज़्यादा एहतियात करते थे। एक दफ़ा हज़रत अबू मूसा आशरी इनके घर आए तो ये किसी काम में थे, उन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, सलाम किया, दूसरी दफ़ा सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया, तीसरी दफ़ा किया, कोई जवाब नहीं आया, तो वो वापस चले गए। तो ये जब काम से फारिग हुए तो उनको बुलाया और फरमाया कि आप वापस क्यों चले गए? फरमाया हमें तो ऐसे ही हुक्म दिया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया कि 3 दफ़ा आप सलाम करें, अगर नहीं कोई जवाब आता तो आप वापस आ जाए। तो फरमाने लगे कि मुझे इसका सबूत दो कि ये तुमने कहाँ से बात सुनी है, और क्या तुम्हारे पास सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया था? वो डर गए और वो लेके अंसार के पास गए और उनको उनके पास ले जाके उनसे उनके सामने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा हाँ हम इस चीज़ के गवाह हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। तो आगे से फरमाते हैं कि हाँ मैं अपने कारोबार में इतना लगा रहा कि मैंने ये बात मिस कर दी, मैंने नहीं सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपको पता है ना इन्होंने 500 से ज्यादा हदीस तो खुद नरेट की हैं, इनसे रिवायत मिलती है। और आप बुखारी खोलें, सबसे पहली हदीस जो बुखारी में, वो हजरत उमर की रिवायत है और उसमें वो एक ही रावी है, वो हदीस किसी और से नरेट नहीं है, सिर्फ हजरत उमर से है। इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली जो है हदीस, वो सिर्फ इन्होंने रिवायत की है। तो पहली हदीस ही इनकी इनसे रिवायत करी गई है। और अपने जो भी जहाँ पे भी इन्होंने गवर्नर या उमाल जो भी यानी कारिंदे जो भी इंचार्जेस बनाने होते थे ना, उसके बारे में बड़ी एहतियात करते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कहते थे ये अल्लाह ताला से ये एक बात की यानी शिकवा करते थे कि मैं फाजिरों की सलाहियतों और नेक लोगों की बेहुनरी और कम हिम्मती की शिकायत अल्लाह ही से करता हूँ। क्या मतलब है कि फाजिर फासिक लोग कई हैं, उनमें सलाहियत है, जो नेक हैं उनके पास हुनर नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो नेकी और तकवा में जरा कम लेवल के होते थे उनको कोई जॉब देनी पड़ती थी, इस वजह से कि वो हुनरमंद ज्यादा है, वो ज्यादा स्किल्ड है, उनको काम आता है, और कई नेकी और तकवा में आगे हैं उनके पास हुनर नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं अल्लाह से ये शिकायत करता हूँ। इतनी यानी एहतियात के बावजूद जो है ना उनका ये हाल था। और अहले बैत की बहुत कदरदानी करते थे, उम्महातुल मोमिनीन का बहुत ख्याल करते थे, हजरत अब्बास का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना। तो आपको पता है कि जब वो कहत का साल आया था तो जो बारिश के लिए दुआ करने के लिए भी हजरत अब्बास को लेकर गए थे कि आप दुआ कीजिए, आप अल्लाह से ताला से दुआ करें, क्योंकि आप ना हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम उनसे कहते थे कि वो दुआ करें, अब हम उनके चचा को अल्लाह के हजूर खड़ा करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए। इतनी ज्यादा यानी इज्जत देते थे और फरमाया करते थे कि मुझे अब्बास का मुसलमान होना अपने बाप के मुसलमान होने से, अगर वो मुसलमान होता तो, क्योंकि पता चलता है कि खत्ताब के बारे में कि उनके बारे में कुछ ज्यादा इसमें तारीख में नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही लगता है कि वो तो पहले ही फौत हो चुके थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले। तो कहते हैं कि अगर वो मेरा बाप मुसलमान हो जाता तो उसके मुसलमान होने से ज्यादा मुझे आपके चचा अब्बास के मुसलमान होने की खुशी है। नहीं, इतनी ज्यादा अहले बैत का उनको होता था। और ये यानी इससे आप अंदाजा करें कि बल्कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब होता ना, ये उसको महबूब रखते थे। जिस वक्त वजीफे मुकर्रर करने थे सबके, जब माले गनीमत में से, शायद वजीफे नहीं थे, माले गनीमत में से हिस्से देने थे, तो ये उनको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के जमाने में सबको इक्वल शेयर मिलता था ना, तो इनके जमाने में इन्होंने कहा था कि नहीं, जिन मुसलमानों ने पहले कुर्बानियां दी हुई है ना उनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए, जो बाद में मुसलमान हुए उनको कम। बदरी सहाबा हैं, बैत रिजवान में जो शामिल हुए वो सहाबा कराम, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दी वो मुहाजरीन, इस तरह से। तो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के, तो उस वक्त उसामा बिन जैद को जो उनको माले गनीमत में से हिस्सा दिया गया, तो इनके बेटे अब्दुल्ला जो थे ना, अब्दुल्ला बिन उमर, वो आए शिकायत लेके कि आपने उसामा को मेरे से ज्यादा दिया, हालांकि दोनों सेम एज के थे, उसामा भी और अब्दुल्ला बिन उमर भी। तो मैंने कौन से ऐसे कम काम किए हैं उसामा से कम, मैं भी तो वही कर, मतलब वो भी बहुत आगे थे अब्दुल्ला बिन उमर। तो अपने बाप से शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनको ज्यादा क्यों दिया। तो बाप ने क्या फरमाया कि उसामा के जो वालिद थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे वालिद से ज़्यादा महबूब थे, और उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा महबूब थे, इसलिए उसका वजीफ उसको उसका हिस्सा ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत, और एक में इतनी प्यारी मुझे वो रिवायत लगी, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये अब्दुल्ला बिन उमर जो थे ना, वो सवार थे, तो जा रहे थे कोई किसी सफर पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो मेरा ऊंट था, मैं अपने बाप के ऊंट पे था, तो वो तेज चलता था, तो वो ना कभी कभी आपसे सल्लम के ऊंट से भी आगे चला जाता था। तो हजरत उमर फरमाते थे, ए अब्दुल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना जाओ। सुभान अल्लाह, यानी इससे क्या फर्क पड़ जाता है, वरना हम सोचे जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है, लेकिन इतना था कि आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और हजरत अब्बास के जो बेटे इब्ने अब्बास हैं, उनकी बहुत कदर करते थे, हत्ता कि जब कोई बहुत अहम मामला होता था ना, कोई मुश्किल कोई मसला आता था, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाते थे। आपको पता है ना, क्योंकि फरमाते थे कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि उन्होंने दुआ की है इनके बारे में, अब्दुल्ला बिन अब्बास के इल्म के और इनकी समझ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हुई है, तो बहुत इनकी कदर करते थे। और हजरत तलहा बिन उबैदुल्ला फरमाते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि सैयदना उमर किसी को भी इब्ने अब्बास से ज्यादा इज्जत देते हो, इतनी ज्यादा उनको इज्जत देते थे। और ये भी इल्म की कदरदानी थी, क्योंकि इन्होंने खुद भी इल्म के लिए बहुत कोशिश की अपनी ममलिकत में, और इल्मी मराकज कायम किए, मस्जिदें इतनी सारी तामीर हुई इनके दौरे खिलाफत में, कहा जाता है कि 12,000 मस्जिदें तो वो थी जहाँ पे जुमा पढ़ा जाता था। ठीक है, और कहाँ कहाँ ममलिकत फैल चुकी थी ना, और मस्जिद उस वक्त सिर्फ नमाज की जगह नहीं होती थी, मस्जिद उस वक्त तालीम का भी मरकज होती थी, मस्जिद उस वक्त वो भी जगह होती थी जहां पर लोग अपने मशवरे किया करते थे, मिलने जुलने की भी जगह होती थी। फिर अगर खलीफा की तरफ से कोई बंदा आया ना, तो वो भी मस्जिद में आके खलीफा का जो भी ऐलान या फैसला या जो बात होती थी वो वहां पे बताता था। इसी तरह अदालती फैसले मस्जिदों में होते थे। तो इनके अहद में क्या हुआ था कि शाम का इलाका जब फतह हुआ, तो यजीद बिन अबू सुफियान ने हजरत उमर को लिखा कि शाम की आबादी बहुत बढ़ गई है, और दूर दूर तक शहरों के शहर लोगों से भर गए, अब आप ऐसे मुअल्लिमीन को भेजें यहाँ पे जो इनको कुरान की तालीम दे, शरई मसाइल बताएं। मैंने आपको कहा ना, किसी इलाके को फतह करना सिर्फ काफी नहीं होता था। अब देखिए, मैं एक उसमें पढ़ रही थी बुक में कि बाज लोग ना, ये चंगेज खान और सिकंदर, जिसको सिकंदर आजम कहते हैं, उसको कंपेयर करते हैं हजरत उमर के साथ। हालांकि आप सिकंदर की कभी हिस्ट्री को उठा के देखें, एक जगह पे उन्होंने कितने लिखे हुए थे, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आपको कि कितने लोगों के सर लटका दिए थे उसने फसीलों के साथ, जहाँ पे बगावत होती थी, यहाँ पे जो लोगों की तरफ से रिसेंटमेंट होती थी, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं करते थे। चंगेज खान का तो आप पता है, खोपड़ियों के मीनार लगा दिया, खून की नदियां बहा दी, जुल्मों सितम की इंतहा, और वो तो साथ साथ होते थे अपनी फौजों के, ये पीछे से बैठ के उनको कमांड करते थे। इन्होंने जो इलाके फतह किए, मैंने आपको बताया, इंसाफ का बोलबाला कर दिया वहां पे, जहां पे कोई भूखा ना सोए, जहां पे यतीमों की निगहदाश्त हो, जहां पर लोगों के मसाइल को हल किया जाए, जहां पे कोई ऐसा ना हो जो कि गुर्बत की सतह पे जिंदगी गुजार रहा हो, कि उसको खाने की पीने की कुछ मिल नहीं रहा, जहां पर इस कदर ख्याल करने वाले खलीफा हो, वहां पे मुझे बताएं कि कौन सी कौम होगी जो कहेगी कि हमें इनकी नहीं हुकूमत चाहिए। और उनकी हुकूमतें देख लें, वो तो इलाकों को फतह करते थे, जुल्मों सितम करते थे, खून खराबे करते थे, आगे बढ़ जाते, उनको तो होश भी नहीं होता था पीछे क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 12,000 मस्जिदें तो सिर्फ वो थी जहां पर जुमा पढ़ा जाता था। और जब ये उन्होंने वहां से लिखा इनके लिए, तो इन्होंने ये खत पढ़ के फिर मुआज बिन जबल को, अबादा बिन सामित को और अबू दरदा को शाम रवाना किया, और उनको ताकीद फरमाई कि तुम सबसे पहले हम्स के शहर से तालीम का आगाज करना, जो बड़ा शहर था, फिर वहां जब आप मुतमईन हो जाओ फिर दूसरे इलाकों में निकलना। तो कहा जाता है कि हजरत मुआज ने फिर और अबू दरदा और अब उबादा बिन सामित, इन्होंने यहाँ पे तालीम को इतना आम कर दिया। अबू दरदा दमिश्क में थे तो इनका इतना बड़ा हलका हुआ करता था। आज के आप स्टूडेंट देख लें, आप जितनी भी कोशिश कर लें तो तकरीबन 1600 वो कहते हैं स्टूडेंट उनके हलके में शामिल होते थे। और ये किस तरह से पढ़ाते थे उनको, कुरान की तालीम देते थे उनको, कि 10-10 की टोलियां बना देते थे और उनके ऊपर एक एक निगरान, एक एक जो उनको सिखा रहा है, और खुद घूमते रहते थे बीच में और चेक करते रहते थे। हम 1400 को कैसे पढ़ाएं वरना। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी फिर बहुत सारा काम किया। और अब्दुल्ला बिन मसूद तो आपको पता है ना कि वो दीन के इल्म के कितने माहिर थे। फिर इसके अलावा इन्होंने मदारिस बनाए। मदारिस जब इनको महसूस हुआ ना कि मस्जिदों से अलग एक और जगह होनी चाहिए, इतने स्टूडेंट्स जब बढ़ गए तो इन्होंने मदारिस बनाए और वहाँ पे खसूसी असातज़ा कराम का इंतज़ाम किया। और कहते थे इनकरेजमेंट के लिए, कहते थे गवर्नरों को कि जो बच्चे भी तालीम के मैदान में आगे हैं ना उनको इनाम दिए जाएं, और जो ख़ास तौर पे तालीम हासिल कर लेते हैं वो तलबा जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको अतियात दिए जाएं, यानी उनको इनामो इकराम से नवाज देते, ताकि लोगों में इस चीज़ की शौक पैदा हो कि हम भी, क्योंकि देखिए जब आप स्पेंड करते हैं ना तो उससे आप कई दफ़ा लोगों का दिल जीत लेते हैं, और लोग जो शायद वैसे ना आना चाहते हों वो भी आके सीखना शुरू कर दें। इनके नज़दीक इल्म की ये अहमियत थी कि फरमाते थे कि बेशक आदमी अपने घर से ऐसी हालत में निकलता है कि इस पर तहामा पहाड़ों जैसे गुनाह होते हैं, मगर जब वो इल्म हासिल करता है तो उसकी बरकत से वो अल्लाह ताला से डर जाता है, अल्लाह की तरफ लौटता है और तौबा करता है। फिर जब घर लौटता है तो इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। लिहाजा तुम उलमा की मजलिसों से दूर ना रहा करो। देखिए ना, जब हम ये कहते हैं इल्म हासिल करो, आज उम्मत मुस्लिमा की हालत क्या है? दुनिया का इल्म ले लें, दीन का इल्म ले लें, सब में पीछे हैं, इल्म की तरफ आना ही नहीं। और जब कहें कि इल्म लो तो फिर कहते हैं इल्म लेना कौन सा फर्ज है, कोई अहमियत नहीं समझी जाती। फिर चलो जो ज्यादा कुछ अहमियत देते ही हैं इल्म को, तो वो दुनिया के इल्म को अहमियत देते हैं, कहते हैं दीन के इल्म की क्या जरूरत है। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाते हैं 1000 आबिदों की मौत एक ऐसे आलिम से कम नुकसानदेह है जो हलाल और हराम का इल्म रखता है। 1000 आबिद भी मर जाए ना तो वो भी कम नुकसान है। आबिद हालांकि इबादत गुजार है लेकिन वो कम नुकसान है एक आलिम की मौत से जो हलाल और हराम की इल्म को रखता हो। इतनी ज्यादा इनके नजदीक इल्म की अहमियत थी। और फरमाते थे कि इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ और वकार के साथ रहना सीखो। जिससे तुमने इल्म सीखा है उसकी इज्जत करो, और जिसने तुमसे इल्म सीखा है उसका भी एहतराम करो। मुतकब्बिर उलमा ना बनो कि तुम्हारा इल्म तुम्हारी जहालत की अक्कासी करने लगे। तुम तकब्बुर ना करो इल्म लेकर, ये जहालत है। और फरमाते थे कोई शख्स उस वक्त आलिम नहीं बन सकता जब तक वो अपने से बड़े आलिम से हसद करता रहे। ये भी तो एक हसद होता है ना कि अच्छा ये मुझसे ज्यादा हो गया, इससे मेरे से ज्यादा शागिर्द हो गया, जब हसद है तो फिर। और अपने से छोटे आलिम को हकीर समझता रहे और अपने अमल का मुआवजा लेता रहे, अपने अमल का मुआवजा ले, तो वो उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता जब तक इन चीजों से ना दूर रहे। और इनके नजदीक तो इल्म भी एक इबादत थी, क्योंकि एक दफा इनके पास यही अबू मूसा आशरी आए थे, मदीना तशरीफ लाए थे, तो इनके घर आए और इशा के करीब का वक्त था। तो हजरत उमर ने पूछा कि आप इस वक्त आए हैं? तो कहते हैं हाँ मैंने कुछ बातें करनी है। कहते बातें इस वक्त? कहते हाँ मैंने कुछ इल्मी बातें करनी है। तो उनको पास बिठा लिया, वो बातें करते रहे और इतना लंबा टाइम गुजर गया कि हजरत अबू मूसा आशरी फरमाते हैं कि अब नमाज का वक्त हो गया। तो आगे से क्या फरमाया? फरमाते हैं अभी तक हम नमाज में ही तो थे, यानी जो इल्मी बात है ना आपकी, जो इल्म सीख रहे हैं, हम सोचते हैं ना नमाज का हमने पता नहीं कोई नफल नमाज पढ़नी है या हमने, तो ये जो आप बैठे में और इल्म सीख रहे हैं ना ये भी ऐसे ही है कि आप नमाज में, यानी वो इसको इबादत कहते थे। जब से हमने ये हटा दिया ना तो हमें लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, इससे बेहतर था मैं बर्तन धो लेती, कोई शॉपिंग कर लेती, कहीं चली जाती, मैं इसका क्या फायदा, क्योंकि हम हर चीज को पैसे से नापते हैं ना कि इसमें कौन से मुझे पैसे मिलने हैं। और जो खत्ताती और इमला के ऊपर बहुत तवज्जो करते थे कि लोगों की जो राइटिंग है ना वो बिल्कुल सही हो, इमला सही हो। आज बहुत सारे ये पोस्ट इस पे व्हाट्सएप पे आते हैं बड़े लिखे होते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ जिनको अल्फाज के सही लिखना भी नहीं आता कि किस चीज़ को किससे लिखना है, जरूर को जे से लिखा हुआ है, तो अब मुझे बताएं कि उनका क्या इल्म होगा और वो पता नहीं क्या क्या इल्मी बातें लिख के बैठे। इनके पास तो एक दफा हजरत अमर बिन आस के कातिब ने, कातिब हुआ करते थे ना उस वक्त जो लिखते थे लेटर्स उनके लिए, उसने एक दफा खत लिखा तो हजरत उमर को जब पहुंचा तो उसने बिस्मिल्लाह में सीन लिखना भूल गया। तो हजरत उमर ने अमर बिन आस को लिखा कि इसको एक दुर्रा लगाओ, तो उसको एक दुर्रा लगाया गया तो उसने कहा ये किस बात पे, तो फरमाई बिस्मिल्लाह के सीन मिस करने पे इतना ज्यादा इस पे। और आप देख लें कि आज स्पेलिंग के ऊपर नहीं कोई तवज्जो, अच्छे भले लिखने वाले पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखते हैं। तो खिलाफत के जो जिम्मेदारी थी ना इसने इनको बहुत सीरियस बना दिया था, लेकिन कभी कभी शेर सुन लिया करते थे किसी से। एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ही फरमाने लगे कि कोई शेर सुनाओ, तो वो शेर सुनाते रहे हत्ता कि जब सुबह होने लगी तो फरमाया अब बंद कर दो, अब आप कुरान पढ़ो। इसी तरह इनके जमाने में मस्जिद नबवी की तौसी की गई और मस्जिद हराम की भी तौसी की गई। अब वो पता है मस्जिद हराम में जो मकामे इब्राहिम है ना, ये पहले काबा की दीवार के साथ ही लगा हुआ था, इन्होंने इसको पीछे किया है ये ताकि नमाजियों के लिए सहूलत हो, तवाफ करने वालों के लिए सहूलत हो। उस जमाने में तो कम लोग होते थे ना, माशाल्लाह अब तो उम्मत मुस्लिमा बढ़ गई है। तो फिर उसके ऊपर ये शीशा नुमा गुम्बद भी इन्होंने बनवाया था। तो आज जिस जगह पे मकाम इब्राहिम है ना, यहाँ पे हजरत उमर ने रखवाया था। फिर इसी तरह इन्होंने ही जो करीब करीब के मकानात थे वो खरीद कर और उनको मस्जिद में शामिल किया था। पहले तो करीब करीब होते होंगे ना मकान, मस्जिद इतनी बड़ी तो नहीं होती होगी, तो फिर वो सारे खरीद के किए। इसी तरह बहुत बड़ी एक बात है कि मस्जिदों में रोशनी का इंतजाम नहीं होता था, इन्होंने फिर वो दिए रोशन कराए, उसकी बाउंड्री वॉल भी बनवाई और दिए रोशन कराए मस्जिद में। और ये भी आपको शायद ना पता हो कि अय्यामे जाहिलियत में जो काबा का गिलाफ होता था वो चमड़े का होता था, तो इन्होंने फिर उम्दा यमनी कपड़े का गिलाफ चढ़वाया। और मस्जिद नबवी में भी इसी तरह था कि मस्जिद नबवी में भी कई इर्द गिर्द के घर इन्होंने शामिल करा लिए, मस्जिद को एक्सपैंड किया और इन्होंने खजूर की टहनियों से इसकी तामीर कराई और ईंटों से तामीर कराई, लकड़ी के सतून लगाए, छतें छत टहनियों से तैयार की गई और उसको ऊपर से ढांप दिया गया ताकि लोग बारिश से महफूज रह सके। और ये इन्होंने मना किया था कि सुर्ख और जर्द रंग करने से मना किया मस्जिद का, कि ये ना हो कि नमाजियों की तवज्जो उस तरफ चली जाए। और इन्होंने फर्श बनवाया था क्योंकि इससे पहले तो मट्टी होती थी ना नीचे जमीन पे, तो इन्होंने फर्श बनवाया था कंकरियां बिछा के ताकि साफ सुथरा रहे और लोगों के लिए भी सहूलत रहे। फिर इन्होंने कई सारे फलाही प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे नहरों की खुदाई की, डैम पुल वगैरह तामीर कराए, रास्तों की निगहदाश्त का इंतजाम किया कि रास्तों में कोई लूट मार ना हो, उसका इंतजाम किया। और खास तौर में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस वक्त आमुर रिमादा था, आमुर रिमादा क्या था, कहत का साल, शाबाश, कहत का साल था, तो उस वक्त ये हाल हो गया था कि जजीरा अरब से कोने कोने से लोग जो है ना मदीना का रुख करने लगे। जाहिर है जहां पे भी कहत साली हुई थी वो लोग इधर आने शुरू हो गए। और ये देखें जिस वक्त कोई, जिसको कहेंगे ना जैसे अब कोविड था, जैसे ऐसे कोई हालात आ जाए ना, उनको क्या कहेंगे जो हंगामी हालात हो, ऐसे हो जाए, उस वक्त किसी हुकूमत का पता चलता है कि ये आप कैसे इसको हैंडल कर, जैसे फ्लड आ गया हमारे मुल्क में, या एग्जैक्टली डिजास्टर आ जाए ना, कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए, तो फिर हुकूमतों को पता चलता है कि इनके अंदर कितनी यानी समझ बूझ है और किस तरह इसको हैंडल करते हैं। अब कई हुकूमतें दुनिया में फ्लॉप इसलिए हुई कि कोविड में वो सही परफॉर्म नहीं कर सके। इनके वक्त में ये इतना शदीद कहत आया था और इसमें जब लोग सारे मदीना चल पड़े, यहाँ पे अब मदीना में तो इतने नहीं थे वसाइल, लेकिन ये हालात थी कि इन्होंने लोगों को एक लोगों में से एक यानी टीम बनाई और कहा कि आप लोगों की खबरगिरी करें और मुझे बताएं कि गिनती करके बताएं यहाँ पे कितने लोग हैं जो खाना खाने वाले हैं, जो जो खाना खाएंगे आज शाम। तो पता चला कि 7,000 लोग हैं, और फिर इन्होंने बीमारों और जो मजबूर लोग हैं उनकी फहरिस्त तैयार कराई, तो 40,000 निकली और उसके बाद 60,000 तक पहुंच गई। और ये हाल था कि लोगों को खाना यहाँ पे मुहैया किया जाता था, सुबह से एक टीम शुरू हो जाती थी खाना पकाने के लिए और फिर लोगों को खिलाते थे। और ये तब तक जारी रहा, 9 महीने तक ये कहत रहा था, और ये जब तक जारी रहा लोगों को इसी तरह खाने दिए जाते थे, उनकी जरूरियात का इंतजाम किया जाता था। ये सारे समझ ले रेफ्यूजीज भी कह सकते हैं, पनाह गुजीन जो थे, और ये इन्होंने एक एक टीम बना दी थी जिनकी ड्यूटी ये थी कि आप बस इनको आपने यानी इनकी केयर करनी है और इसमें किसी किस्म की कोताही ना हो, और खुद जाके मॉनिटर करते थे ये सारे इंतजाम को कि क्या बन रहा है। और खुद क्यों नहीं खाते थे, हालांकि बैतुल माल तो इनके पास था ना, खुद चाहते तो खुद तो अच्छा खाते। फिर भी आज देखें कई किसी जगह पे लोगों के फ्लड से घर गिर गए, कि कई जगह लोगों को खाने पीने को भी नहीं मिल रहा, लेकिन क्या बाकी लोगों ने अपना खाना पीना छोड़ दिया? या कोई वजीर है, या कोई मुशीर है, या कोई काउंसलर है, वो तो कहते हैं हम तो खाए ना। इन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया था, और वही अल्लाह अकबर के यानी जो खाना वो खा रहे हैं वही खाते थे, और कहते थे कि मुझे अवाम का हाल तब तक सही समझ नहीं आ सकता जब तक मैं खुद उनके हालात को ना गुजारूं। जाहिर है अगर आप एसी में बैठे हुए हैं तो आपको क्या पता जिनके पास बिजली नहीं है वो किस उस कर्ब से गुजर रहे हैं गर्मी में। अगर आपके घर में फ्रिज का ठंडा पानी है, आपको क्या पता कि जो लोग पानी से महरूम है वो किस तरह है। अगर आप अपने महलों के अंदर आराम कर रहे हैं बिस्तरों पे, तो आपको क्या पता वो जो बेघर बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या है। तो इतना ज्यादा उनको एहसास था कि कहते थे कि जब तक मैं इन हालात से खुद ना गुजरूं उस वक्त तक नहीं मैं समझ सकता। और तब तक ये देखें इनके बारे में यानी लोग बताते थे कि इनका रंग बदल गया था इन हालात में, जो आमुर रमादा में। अयाज बिन खलीफा फरमाते हैं कि मैंने आमुर रमादा में सैयदना उमर को देखा कि इनका रंग स्याह पड़ गया था, हालांकि वो अरबी नस्ल थे, पूरे सफेद थे, तो उनका रंग कैसा हो गया था। और उन्होंने अपने लिए भी घी और दूध अपने लिए भी मना कर दिया था, और सिर्फ तेल इस्तेमाल करते थे और भूख बर्दाश्त करते थे। इस तरह उनकी सेहत बुरी तरह मुतासर हो गई थी। अगर चाहते तो वो बहुत कुछ खाते पीते। और असलम कहते हैं इनके जो गुलाम थे, कहते हैं अगर अल्लाह ताला इस आफत को दूर ना करता तो मुमकिन था कि उमर मुसलमानों के गम में ही हलाक हो जाते। इतना गम करते थे, रातों को दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को हलाक ना करना, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मद को मेरे हाथों हलाक ना करना, कि मेरे यानी दौर में इनके उनके ऊपर हलाकत आए। कहते हैं कि इशा की नमाज पढ़ के ना मुसलसल नमाज पढ़ते रहते थे लोगों के साथ पढ़ के। घर जाके जब रात का आखिरी पहर हो जाता तो पहाड़ी रास्तों की तरफ निकल जाते थे और वहां चक्कर लगाते और फिर सहरी तक दुआएं करते रहते थे। अच्छा आप बताएं कि इस चीज से कौन मना करता है? अगर किसी के पास वसाइल नहीं है और उसके अंडर कोई लोग हैं जो काम कर रहे हैं और वो खुद मजबूर है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, दुआ तो कर सकते हैं ना। लेकिन कितने लोग हैं जो दुआएं करते हैं? और ये सिर्फ टॉप के हुक्मरानों की बात नहीं है, अगर हमारे अंडर 5 लोग भी हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सदर और वजीर आजम का ही कसूर है। जो भी किसी का निगरान है वो किस तरह उसके लिए एग्जाम्पल बनता है, ये हमें हजरत उमर की इस बात से पता चलता है। आप जिनके भी जिम्मेदार हैं फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे उनके साथ करते हैं। ताकि बनु नसर से ताल्लुक रखने वाला एक फर्द मालिक बिन औस बयान कहता है कि आमो रिमादा के दौरान मेरी कौम के 100 घराने हजरत उमर के पास आए और कयाम किया, तो सैयदना उमर के पास जो भी आ जाता था वो उसको खाना खिलाते थे, जो नहीं पहुंच सकता था उसके पास आटा खजूर और सालन भेज देते थे, और मेरी कौम के लोगों को माहाना इतना सामान भेज देते थे जो उनके लिए काफी होता था। मरीजों की खबरगिरी करते, और हलाक कितने लोग हुए थे ये पता चलता है कि कस्बों और देहातों में इतनी कसरत से हलाकते हुई थी, तकरीबन 2/3 लोग जो है ना वो मौत के मुंह में चले गए थे। और आप देखें कि इतने लोगों के कफन दफन का इंतजाम करना भी कोई आसान बात तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसका इंतजाम करती थी। तो कहते हैं इन दिनों मैंने देखा कि लोग मर रहे हैं और हजरत उमर खुद लोगों के जनाजे पढ़ा रहे हैं, और एक दफा मैंने देखा कि उन्होंने 10 लोगों का इज्तमाई जनाजा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। फिर जब कहत साली खत्म हुई तो फिर हजरत उमर ने लोगों से फरमाया कि लोगों, तुम जिन देहातों में रहते थे वहां वापस चले जाओ। फिर उनमें से जो कमजोर लोग थे उनको खुद सहारा देकर उनके घरों और शहरों तक पहुंचाते थे। आप देखें, अल्लाह अकबर। फिर इन्होंने गोदाम बनवाए थे, गोदाम जिसके अंदर ऑल द टाइम आटा, सत्तू, खजूरें रहती थी, वहीं से फिर इनको भी फिर दिया ना। लेकिन अदरवाइज वो किस चीज के लिए थे कि मेहमानों के लिए, मुसाफिरों के लिए, ऐसे स्टोरेज के वो थे। इसी तरह बैतुल माल जो था, पहले भी बैतुल माल तो होता था, लेकिन बैतुल माल में खजाने जमा नहीं होते थे। इनके वक्त में फिर पहले तो होता था ना, आपसे सलम के वक्त में बैतुल माल होता कि आया और चला गया, आया और इधर तकसीम कर दिया। इनके वक्त में फिर खजाना रखा जाने लगा, इतना ज्यादा खजाना था। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आज आपको लगती होगी कि आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो उस जमाने की येलो कैब्स क्या थी, जो कैब्स थी वो क्या थी कि उन्होंने ऊंट वालों को कहा हुआ था, बहुत सारे ऊंट वालों की ये जिम्मेदारी लगा रखी थी कि जिन लोगों के पास सवारी नहीं है तो फिर वो जहां पे भी मुमलिकत में जो जाना चाहे ना, तो उन तक उनको अपने ऊंटों पे बिठा के वहां तक ले जाया जाए। फिर इन्होंने ये नाइल रिवर जो है और रेड सी के दरमियान खलीज निकाली थी, और जहाज और यानी कश्तियां यहाँ पे यानी चलती थी ताकि ट्रेडिंग हो, और मिस्र को इससे सऊदीया से आपस में मिलाने के लिए ना, यानी बहरी तौर पे भी ट्रेडिंग और सफर और ये सब शुरू हुए थे। और इनके जमाने के अंदर ही ये, आपको पता है, ये किसी जगह पे भी वहां पे कैपिटल नहीं बनाने देते थे जहां से जमीनी रास्ता ना हो मदीना तक का। तो एलेक्जेंड्रिया जो था वो उस वक्त कैपिटल हुआ करता था। जब मिस्र फतह हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जो आज का कैरो है, काहिरा, तो वहां फुस्तात उसका नाम था उस वक्त, खैमे को कहते हैं, अमर बिन अल आस ने वो फतह किया था। तो वहां पर ये शहर डिवेलप किया गया, उन्होंने उस वक्त डिवेलप किया था जो आज का कैरो है। कई नए शहर इनके जमाने के अंदर तामीर किए गए, जिसमें बसरा है, कूफा है, मोसल, मोसल की कितनी खबरें आप सुनते हैं सीरिया में, उस्ताद है, फिर जजीरा है, ये सारे शहर नए इन इनके जमाने में बने। फिर फौजी छावनियां इन्होंने बनाई और मुसलमानों को तरगीब देते थे कि वो जाएं ऐसे इलाकों की तरफ, हिजरत करें ताकि वहां पर भी दीन इस्लाम फैले, क्योंकि मुसलमान जाएंगे तो फिर इस्लाम फैलेगा ना, कि वहां जाके आप रहें, वहां पे लोगों को भी तालीम दें, वहां पे लोगों को इस्लाम से रोशनास कराएं, तो ये करते थे। अच्छा, एक बहुत जबरदस्त बात इनके दौर की है जो डॉक्टर अब्दुल अजीज ने लिखी है। वो कहते हैं, मैंने अपनी पूरी स्टडी के दौरान उमर, सैयदना उमर के किसी वाली को अपने से पहले किसी वाली की तजलील करते हुए या उसकी चुगली करते हुए नहीं पाया, बल्कि वो अपने पहले ही खुतबे में उनकी तारीफ और खूबियां बयान करते थे। समझ आई बात? ये हर गवर्नमेंट आती है ना, वो क्या कहती है, पिछलों का ये कसूर, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। वो कहते हैं कोई इनका वाली ऐसा नहीं, मैंने पूरा तारीख का जायजा लेके देख लिया कि कोई ये कह रहा हो कि वो बुरे थे, सब आते थे तो अगले की तारीफ ही करते थे, सुभान अल्लाह। और फिर हम ये देखते हैं, हम सोचते हैं ना कि सिंध में इस्लाम फैला आया, मतलब बाद में आया और उमवी दौर में आया, हालांकि हकीकत में जो पहला हमला सिंध पे हुआ था वो हजरत उमर के दौर में हुआ था, और 23 हिजरी में हकम बिन अमर के हाथ पर मकरान फतह हुआ था। और फिर उसके बाद और भी साहबा वहां पे चले गए थे, और इन्होंने वहां के जो बादशाह था उससे बड़ी शदीद जंग लड़ी थी। और फिर हकम बिन आमर ने फतह की खुशखबरी हजरत उमर को भेजी, और साथ उन्होंने ये बताया इस जगह के बारे में। अब ये भी सुनने वाली बात है कि उन्होंने क्या बताया होगा, अमीरुल मोमिनीन, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें पानी थोड़ा है, खजूरें इंतहाई रद्दी हैं, दुश्मन दलेर है, खैर कम है, शर ज्यादा है, वहां का ज्यादा सामान भी कम और नाकारा है, इसके अलावा जो तफसीलात हैं वो इससे भी बदतर हैं। हजरत उमर ने फरमाया था कि तुम ये मुझे कोई खबर दे रहे हो या तुम वहां की बुराइयां मुझे बता रहे हो? उन्होंने कहा जो मेरे पास, जो मैंने कुछ देखा है वही मैं अर्ज कर रहा हूं। तो फिर हजरत उमर ने फरमाया कि अब मकरान से आगे तजावज ना करो, और फिर उन्होंने कहा आप इसी दरिया के इसी पार रहो। तो ये जो बलूचिस्तान में आगे मकरान की है ना सी पोर्ट, यहाँ तक मुसलमान आ गए थे। यानी इस एरिया के अंदर हजरत उमर के वक्त के अंदर ही ये सब हुआ था। आज यहीं तक रहने देते, मैं सोचा था आज हम काफ़ी ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल 2 सेशंस और होंगे, फिर हमारा ये हज़रत उमर का मुकम्मल होगा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।